तुम्हारा कफन, अपने कफन को मत भूल जाना। अपनी वार्डरोब याद रहती है, ईद के कपड़े याद रहते हैं, शादी के कपड़े याद रहते हैं, फ्रेंड की शादी के कपड़े याद रहते हैं, सब याद रहते हैं। इमाम कुर्तुबी कह रहे हैं, अल्लाह याद करा रहा है कि देखो अपने कफन को मत भूल जाना। इसलिए कि मटेरियलिस्टिकली अगर कोई चीज इंसान के साथ दुनिया की उसकी कब्र में जाएगी तो वो यही दो चादर के टुकड़े होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं, कॉटन के चादर के सफेद दो टुकड़े बस, बाकी सब आप पीछे छोड़कर चली जाएंगी। ये है दुनिया की असल में हकीकत। इमाम गजाली ने अपने एक शागिर्द को एक मरतबा दुनिया की हकीकत बताने के लिए एक मिसाल दी। वो कहते हैं कि दुनिया की हकीकत क्या है, कहते हैं कि एक शख्स जंगल में से जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था, तो गुजरते हुए कुछ रास्ता क्रॉस करने के बाद उसको फील हुआ कि एक शेर है और वो शेर उसको फॉलो कर रहा है। तो इस शख्स ने दौड़ना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। दौड़ते 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 ये एक जगह पे पहुंचा जहां पर एक कुआं था। तो उसको समझ नहीं आया कि सामने कुआं है और पीछे शेर है, तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में छलांग लगाई तो उसको रस्सी एक हाथ में उसके आ गई, तो बहुत खुश हुआ कि चलो रस्सी मेरे हाथ में आ गई तो मैं एक गहरे पानी में, पानी के पिट में गिरने से बच भी गया और मैं जो हूं शेर से भी बच गया। लेकिन अब इंतजार करता रहा कि शेर जाएगा तो मैं बाहर निकलूंगा। अब वो गुजरता गया वक्त, गुजरता गया गया वक्त, लेकिन शेर जो था वो वहां से हिला ही नहीं। तो शेर वहीं बैठा हुआ है, हुवर कर रहा है कि ये कब शख्स बाहर आए और मैं इस पर हमला करूं, और उधर ये शख्स जो है ये उस रस्सी से लटक रहा है और नीचे जो है वो गहरा पानी है। कहता है कि इसी इंतजार में थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि दो चूहे हैं, माउस हैं, एक काला है और एक सफेद है, और दोनों ने उस रस्सी को निबल करना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। चूहा कुतरता है ना चीजों को। तो ये शख्स कहता है कि मैंने देखा कि वो जो दो चूहे हैं उन्होंने उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया है, इसी परेशानी में कि ये काटेंगे तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। कहता है मेरी नजर जो है वो कुएं की दीवार पर पड़ी तो वहां पर एक हनी कॉम था, मक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। तो इसने क्या किया, अप्रोच में था तो इसने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया, हनी कॉम में से हनी ली और उसको लिक किया, उसको टेस्ट किया। ये शख्स कहता है कि जब इसने हनी को अपनी जुबान पर टेस्ट किया थोड़ी देर के लिए वो भूल गया कि शेर है बाहर, नीचे पानी है और रस्सी जिससे मैं लटक रहा हूं उसमें दो चूहे जो हैं वो उसको मुस्तकिल काट रहे हैं। कुछ समझ आया? इमाम गजाली कहते हैं कि वो जो शेर था वो असल में इंसान की जिंदगी में उसकी मौत है जो हर वक्त उसको चेस करती है। हमारी मौत हमारे साथ साथ होती है। मौत के लिए कहते हैं मौत इज द बेस्ट गार्ड, डेथ इज द बेस्ट गार्ड। कोई गार्ड आपको इतना नहीं बचाएगा जितनी मौत आपको बचाएगी। इसलिए कि जब तक आपका वक्त नहीं आएगा मौत आपको मरने नहीं देगी, अल्लाह ने उसको यही हुक्म दिया हुआ है। तो इस मिसाल में, इस कहानी में जो शेर है वो मौत है, डेथ है। वो जो गढ़ा है पानी का जिसमें इंसान गिर जाएगा वो उसकी कब्र है। इसलिए कोई चाहे ना चाहे उस कब्र में तो इंसान को जाना ही जाना है, और यही कब्र होगी जो एक नेक इंसान के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, और अगर बुरा इंसान होगा, नाफरमान इंसान होगा, तो जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी। फिर इमाम गजाली कहते हैं कि वो जो रस्सी है वो उसकी जिंदगी है, और वो जो दो चूहे हैं जिनमें से एक वाइट माउस और एक ब्लैक माउस है, ब्लैक माउस आपकी रात है और वाइट माउस आपका दिन है। आपका दिन और आपका रात इतनी ही तेजी से गुजर रहा है और आपकी दुनिया की जिंदगी की रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा है, और वो हनी कॉम क्या है, दुनिया, दुनिया की टेम्पटेशंस, दुनिया की जिंदगी, दुनिया की ख्वाहिशात। तो ये मिसाल इमाम गजाली ने दी और दुनिया की हकीकत बता दी कि दुनिया की इतनी ही सी हकीकत है, और दुनिया इतनी ही तेजी से आपको धोखा देती है। दुनिया आपके ऊपर एक डिल्यूजन का पर्दा डाल देती है, मताउल गुरूर कहते हैं ना दुनिया को। तो इसीलिए कहा अल्लाह ताला ने कि जो अल्लाह से गाफिल होगा, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होगा, वकाना अमरुहु फुरूता, उसका तो मामला जो है वो हद से आगे बढ़ जाएगा। ये जो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने दो कैटेगरीज बयान किए हैं, वस्बिर नफ्सका मा अल्लज़ीन यदउन रब्बहुम बिलगदावाति वल अशी, कि उन लोगों का कंपनी, उन लोगों का साथ जो कि सुबह और शाम अल्लाह को पुकारते हैं, युरीदून वजह, ताकि अल्लाह की रजा हासिल करें। तो इसमें एक वो लोग हैं जो रात दिन कुरान के साथ गुजारते हैं, जिनका उठना बैठना कुरान है, जिनकी बाकी सारी जिंदगी की रूटीन अपने कुरान के साथ अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते हैं। जैसे आप बाज़ लोगों को देखती होंगी, अगर वो कहीं डिनर पर जाएंगे या किसी को बुलाएंगे या कोई मीटिंग अरेंज करेंगे या कहीं सर्वे के लिए उनको जाना होगा, तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं मगरिब के बाद पहुंच जाऊंगा, अच्छा मैं इशा के बाद पहुंच जाऊंगा। ज्यादातर ऐसा होता है ना, इसलिए कि वो लोग कौन होते हैं जो अपनी फर्ज नमाजों को बाजमात अदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक कैटेगरी ये बताई है, वो लोग जो हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं, अपने रिचुअल्स में, अपनी इबादात में अल्लाह को याद रखते हैं और अपनी जिंदगी के मामलात में भी अल्लाह से गाफिल नहीं होते। दूसरा ग्रोह वो है जिसको अल्लाह ही याद नहीं रहता, और उनकी कैफियत क्या है, वला तोते मन अगफल नकलबहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु। ये वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हैं और ये अपनी ख्वाहिशात को इलाह बनाकर बैठे हैं। तब आपके और मेरे पास चॉइस है, हम इन दो कैटेगरीज में से किस कैटेगरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, किस टीम में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह हमें पहली टीम में शामिल करे, वो लोग जिनकी जिंदगी का मकसद होता है युरीदून वजहहु, जो अल्लाह की रजा चाहने के लिए ही अपनी जिंदगी के सारे मामलात निभाते हैं। और अल्लाह ताला ने ये चॉइसेस दे दी और अल्लाह ने कहा कि हक नाजिल हो चुका है, इस उम्मत के ऊपर दीन की तकमील हो चुकी है, आपकी और मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान के अहकामात कामिल हैं, आपकी और मेरे पास अब कभी कहीं किसी जगह पर किसी इंस्ट्रक्शन की कमी नहीं है, बिजनेस एथिक्स हो या फाइनेंस हो या मेडिसिन हो या इंजीनियरिंग हो या साइकोलॉजी हो, हर फील्ड की इंफॉर्मेशन, हर फील्ड की गाइडेंस कुरान में मौजूद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में मौजूद है, आपकी अहदीस में मौजूद है। अल्लाह बरहक कुरान नाजिल कर चुका है। तो आगे आयत नंबर 29 में फरमाया وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए अल्लाह की तरफ से हक यही है, فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, तो अब जिसका दिल चाहे ईमान ले आए, وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। अल्लाह ताला ने चॉइस दी है इंसानों को, चाहे तो अल्लाह के जिक्र की जिंदगी अडॉप्ट कर लें और चाहे तो अपने दिल को गफलत का शिकार कर लें। अल्लाह ताला किसी के हलक से जबरदस्ती हिदायत नहीं उंडेलता, और याद रखें अल्लाह हिदायत का रास्ता उसी को दिखाता है जो गिड़गिड़ाकर हिदायत मांगता है। कितनी आपको प्यास लगी हो डिपेंड करता है आप उसी इंटेंसिटी के साथ पानी मांगते हैं। आप इमेजिन करें कि आपका रोजा नहीं है और आप खाना खा के और पानी पी कर बैठे हैं, और ऐसे आपका दिल करे बाय द वे के प्यास लग रही है शायद पानी पी लूं, तो आप अपनी मेड से कह देते हैं कि जरा एक ग्लास पानी लाना, मेड भूल जाती है, और आपको भी बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगी थी तो आप भी भूल जाती हैं। अब इमेजिन करें कि इफ्तारी का टाइम है और आपने 15 घंटे का रोजा रखा है और बीच में 2 घंटे के लिए आपकी लाइट भी चली गई थी, तो आप एसी में भी नहीं थी, और उसके बाद आप कुरान की क्लास में भी आई हुई थी, तो जाहिर बात है तैयारी और नींद पूरी नहीं हुई और सब कुछ, और आपका हलक खुश्क हो रहा है, और आप मेड से कहती हैं 7:15 हो रहे हैं ठंडा पानी का एक ग्लास ले आओ, मेड भूल जाती है, तो आपके अंदर से एक स्क्रीम और चीख निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो डिपेंड करता है कि आप जब हिदायत मांग रही हैं तो कितने दिल के साथ मांग रही हैं, कितनी आपको जरूरत है, जितनी आप हिदायत की जरूरत महसूस करेंगी उसी इंटेंसिटी के साथ मांगेंगी। तो अल्लाह ने तो चॉइस दी है, अल्लाह ने दोनों रास्ते वाजे कर दिए हैं, हिदायत का रास्ता भी वाजे है और डिवियंट रास्ता भी वाजे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तिर्मिजी में सही हदीस आती है, आपने फरमाया सलासुन इदा खरजना लम यनफा नफसन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब्ल, आपने फरमाया 3 साइंस जब अपियर हो जाएंगे, 3 अलामात जब वाजे हो जाएंगी, तब ईमान लाना फायदा नहीं देगा। ये तो अभी जो चॉइस नजर आ रही है ना, फमन शाह अफल युमिन व मन शाह अफल यकफुर, जो चाहे मुसलमान हो जाए, जो चाहे सिरात मुस्तकीम अडॉप्ट कर ले, जो चाहे अल्लाह का बताया हुआ लाइफस्टाइल और कल्चर अपना ले, और जो चाहे इनकार कर दे, ये चॉइस लिमिटेड है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक ये इन 3 साइंस से पहले पहले की चॉइस है, इसलिए कि आपने फरमाया जब ये 3 साइंस ऑब्वियस हो जाएंगे, अपियर हो जाएंगे, निकल आएंगे, खरज ना का अल्फाज आते हैं, जब ये निकल आएंगे तो फिर उसके बाद इंसान को ईमान लाने की तौफीक नहीं मिलेगी, हिदायत की तरफ आने का फिर कोई चांस नहीं रह जाएगा, बिकॉज उसके बाद फिर आजमाइशें और बढ़ जाएंगी। और वो तीन साइंस और तीन अलामात क्या हैं? आपने फरमाया अल आयातु दज्जाल, दज्जाल जब अपियर हो जाएगा, दज्जाल जब बाहर आ जाएगा। दूसरा साइन वद्दाबतु, वो जानवर जिसको अल्लाह ताला जमीन से निकालेगा, द बीस्ट। और तीसरा साइन वतुलु इश्शम्सी मिनल मगरिबी अव मिन मगरिबिहा, जब सूरज जो है वो अपने डूबने की जगह से राइज होगा, यानी मगरिब से राइज होगा, मगरिब से तुलू करेगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये बता रही है कि ये आयत नंबर 29 का ऑप्शन, 29 वाली फ्री विल का यूज करने का मौका इन अलामात से पहले पहले तक है। क़यामत के करीब जो है ये जो दाबा आता है जानवर, अल्लाह ताला क़यामत के करीब, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह एक जानवर को, एक बीस्ट को जो है वो अपने हुक्म से जमीन से निकालेगा या जमीन पर लाएगा, जिस जो जानवर है वो इंसानों से बात करेगा। और वो क्या कहेगा वो जानवर? वो कहेगा अन्नन्नास कानू बी आयातिना ला यूकिनून, यकीनन ये इंसान अल्लाह की आयात पर यकीन रखने वाले नहीं थे, और अब ईमान लाना जो है ये फायदा नहीं देगा। जिन्होंने वही की कदर नहीं की, जिन्होंने दुनिया की जीनत की हकीकत नहीं पहचानी, जिन्होंने कुरान के अहकामात को सुनकर भी वैल्यू नहीं किया, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाशीर को और उनके इंजार को हकीकत नहीं समझा, ये उस वक्त भी नहीं पलट सकेंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी की मोहलत से फायदा नहीं उठाया। तो आज अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है, अल्लाह ने आज इख्तियार दिया है। देखें आज भी मुसलमान बहुत से हैं, 7 बिलियन की पॉपुलेशन में दुनिया की तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान है। 2 बिलियन मुसलमानों में कलमा गो तो सारे हैं, सब कलमा पढ़ते हैं ना। जिसने कलमा पढ़ लिया, जो बॉर्न मुस्लिम है, जिसके रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखा है, वो मुसलमान है। यकीन कितने लोगों को है? और यकीन क्या होता है? यकीन कल्बी क्या होता है? जो आपके दिल का यकीन आपके अमल में रिफ्लेक्ट करे। वल अमलु बिल जवारे, जो आपके आज़ाब पर नजर आए, आप चलते फिरते इस्लाम नजर आए, आप बोलें तो इस्लाम की बात करें, आप सुने तो आपका सुनना इस्लाम का सुनना हो, आप सोचें तो आपका सोचना इस्लाम के जैसा हो, आप मामलात करें तो आपका मामलात करना इस्लाम के जैसा हो। कलमा गो तो बहुत सारे हैं, ईमान रखने वाले और यकीन रखने वाले बहुत कम हैं। तो अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि आज फायदा उठा लो, इससे पहले कि ये तीन अलामात नजर आ जाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताई गई हैं, कि फिर इंसान अगर चाहेगा भी तो वो अल्लाह की बात नहीं मान सकेगा, इसलिए कि आजमाइशें बहुत ज्यादा हो जाएंगी और अल्लाह ताला हमारा दिल खोलेगा। आप उम्मीद तो रखें, लेकिन याद रखें कि इस उम्मीद पर कि हाँ जब मैं कन्विंस हो जाऊंगी तब अल्लाह की इताअत करूंगी। आपको क्या मालूम वो सुबह कभी भी ना हो जिसमें मुझे कन्विंसिंग पावर मिल जाए? आपको क्या मालूम कलीज होती है कि नहीं होती हमारी? हम में से किसी के पास स्टैम्प पेपर पे ये लिखा हुआ नहीं है, या आप और मैं पैदा नहीं होते उस स्टैम्प पेपर के साथ कि जो आज पैदा हो रही हैं इनकी डेट ऑफ डेथ ये होगी? किसी को नहीं मालूम। इस इंतजार में मत रहे कि देखें जब मैं कन्विंस हो जाऊंगी जब अमल करूंगी, कल किसने देखी है? और आपको क्या गारंटी है कि आपको जिंदगी में कन्विंस होने का मौका मिल जाएगा? बेहतर है कि दिल चाहे या ना चाहे ऑब्लिगेशन पर अमल करना शुरू कर दें, अल्लाह की बात मानना शुरू कर दें। अल्लाह दिल खोलने वालों में से। याद रखें हमने कई दफा अभी सुन लिया 3-4 दिन में कि जो अल्लाह की तरफ 1 कदम उठाता है अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम आता है, जो चल कर आता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। और अल्लाह ने कह दिया है कुलिल हक, कुरान हक है, कुरान सच्चा है, कुरान के रूल्स और रेगुलेशंस इंसान को नुकसान देने वाले नहीं हो सकते, ना इंडिविजुअल लेवल पर ना कलेक्टिव लेवल पर। इस्लाम के कवानीन इंसानों को फायदा देने के लिए बनाए गए हैं, यही हक है। कुरान हमारे शक को दूर करने वाली चीज है, कुरान हमारे सवालों के जवाब देने वाली चीज है। आए तो इसके करीब, बैठे तो इसके सामने, खोलें तो इसको अपनी जिंदगी में, समझे तो इसको। असाबे कहफ के बारे में कुरैश ने जो सवाल किया था, क्या अल्लाह ताला ने उसका जवाब नहीं दिया? दिया। सहाबा जब सवाल किया करते थे वह यस अलूना का अनिर रूह, तो क्या अल्लाह जवाब नहीं देता था? جب صحابہ پوچھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں تو اللہ جواب نہیں دیتا تھا؟ جب صحابہ پوچھتے تھے اور صحابیات پوچھتی تھی کہ حیض کیا ہوتا ہے تو کیا اللہ نے جواب نہیں دیا؟ تو میں یہ کیسے سمجھتی ہوں کہ جو میرے کنفیوژنز ہیں، جو میرے سوال ہیں دین کے بارے میں، اس کا جواب مجھے قرآن کے سامنے بیٹھ کے نہیں ملے گا؟ بیٹھیں تو ملے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کہا ہے قل الحق، حق یہی ہے، اور اللہ کہہ چکا ہے کہ جو اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے اللہ اس کو چوائس دے دیتا ہے، وہ چاہے تو ایمان لے آئے اور چاہے تو کفر کر لے. اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سرٹن ٹائپ آف فری ویل دی ہے، ہم روبوٹس نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں ایک طرح کی فری ویل دی ہے، اور اسی فری ویل کی بیسس پر حساب کتاب ہوگا. یہ فری ویل کہ میں چاہوں تو اللہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر لوں، اور میں چاہوں تو اللہ کی نافرمانی کی زندگی جو ہے وہ گزارتی رہوں. یہ ایلیمنٹ آف فری ویل ہر انسان کے اندر موجود ہے. ہاں یقیناً یہ فری ویل جو ہے یہ اللہ کی قدر کے کنٹرول میں ہے، اللہ جانتا ہے کون سا بندہ جو ہے. اور جیسے ماں اپنے بچوں کو جانتی ہے، ہم مائیں جو ہیں دنیاوی لحاظ سے کتنے کیا ویلیو رکھتے ہیں عقلوں کے حساب سے. انسان اپنی زندگی کے اندر 5-7% سے زیادہ اپنا برین استعمال نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود، اتنا کم استعمال کرنے کے باوجود ماں اپنے بچے کو جانتی ہے. اللہ رب العزت جو اپنی صفات میں کامل ہے، اس نے جو انسان خود بنائے ہیں وہ انسانوں کی نیچر سے نہیں جانتا ہوگا کہ کون کہاں تک پہنچے گا. تو فری ویل ہر انسان کو دی گئی ہے. ایک سکول آف تھاٹ ہے دنیا میں جو کہتا ہے اور جس کا خیال ہے کہ نہیں، انسان جو ہیں ان کو صرف روبوٹس کی طرح بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں وی آر جسٹ لیوز ان دا ونڈ، پتوں ایسے پتے ہیں جو ہوا میں بس یہاں سے وہاں اڑتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں ہوا لے جاتی ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو فیصلے کا اختیار دیا ہے، اور اس کو یہ عقل دی ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کو اپنے آس پاس دیکھ کے، اپنی جان کو دیکھ کے، اپنے انفس کو دیکھ کر، کائنات کو دیکھ کر، قرآن کو سمجھ کے اللہ پر ایمان لے کر آ جائے. اسی طرح ایک آپ کو بلیف ملتا ہے، ایک سکول آف تھاٹ ملتا ہے دنیا کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کمپلیٹلی فری ہیں اور ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں. ہم کمپلیٹلی فری نہیں ہیں. ہمارا جو ہم مسلمانوں کا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سرٹن ایلیمنٹ آف فری ویل ہے. اب ہم ایک حد تک اپنی فری ویل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ فری ویل ہدایت کو چوز کرنے یا کفر کو چوز کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں پورا اختیار نہیں ہے. کیا آپ کو اور مجھے اختیار ہے ہم جب چاہیں اپنے دل کو روک لیں اور جب چاہیں اس کو آن کر دیں؟ ہمیں تو اختیار نہیں ہے. تو بیلنس معاملہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسی کی ہمیں یہاں پر جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں یہ دنیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ اللہ چیک کرے کہ کون اپنی فری ویل سے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف آتا ہے. جیسے سورہ تکویر کی آیت نمبر 28 اور 29 میں آتا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہے صراط مستقیم پر آ جائے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور یقیناً تم نہیں چاہ سکتے ہو مگر وہ جو تمہارا رب چاہے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے کس بندے کے اندر کیا کیپیبلٹی ہے. تو اللہ نے آگے اسی آیت میں پہلے بتا دیا کہ تمہارے پاس آپشن ہے ہدایت یا کفر کا، اور اس کے بعد بتا دیا کہ جو گلیڈ ٹائیڈنگز اور انذار کو دیکھنے کے باوجود، قرآن کو سننے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود، رسول اللہ کی تعلیمات اور ان کی پرسنالٹی اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کو جاننے کے باوجود ہدایت پر نہیں آئے گا، تو اللہ نے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کی ہے. عربی زبان میں یہ اعتدنا جو آتا ہے، یہ آتا ہے کسی چیز کو بہت بہت ہی زیادہ محنت سے اور سٹیپ بائی سٹیپ بنانا. جیسے جہنم کے لیے آپ کو احادیث میں ملتا ہے جو اس کا ایسنس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 سال تک اس کو دہکایا، پھر 70 سال تک جو ہے اس کی آگ جو تھی وہ پہلے سفید تھی، پھر سیاہ ہو گئی، پھر پچ ڈارک ہو گئی. مختلف نریشنز آپ کو اس جہنم کی آگ کے بارے میں مل جاتی ہیں. آتد نہ ہوتا ہے کسی چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ پریپیئر کرنا. تو اللہ نے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بے شک ہم نے ظالم لوگوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں، آپ سوچیں آگ کی دیواریں، हमसे तो आग का एक फ्लेम का टच बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी दीवारें इनको सराउंड कर लेंगे, सुरादिकोहा इनवेलप कर लेंगे, आग उनको लपेट लेगी। हम जहन्नुम को मामूली नहीं समझते, ज्यादातर लोग जहन्नुम को मामूली समझते हैं और इतने आराम से कहते हैं तो क्या हुआ, थोड़े दिन आग में जल जाएंगे फिर निकल आएंगे, फिर तो जन्नत ही जन्नत है। जहन्नुम को मामूली नहीं समझे। आखिरत का, हेयर आफ्टर का सबसे हार्डेस्ट और सबसे टफेस्ट पार्ट जहन्नुम है, सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा। हालांकि रोजे महशर में, जब से रोजे महशर शुरू होगा, अगर आप रोजे महशर के ऊपर जो है वो पढ़ना शुरू करें जो कुरान और अहादीस बताते हैं, तो उससे पता चलता है कि हिसाब से पहले ही लोगों का हाल बुरा हो जाएगा इंतजार कर करके हैबत से। और लोग एक नबी के पास जाएंगे, फिर दूसरे नबी के पास जाएंगे, फिर तीसरे नबी के पास जाएंगे कि आप अल्लाह से कहिए कि हिसाब शुरू कीजिए, हमसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए कि हदीस में आता है कि लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप अल्लाह से कहिए, आप तो अल्लाह के पसंदीदा और चुने हुए हैं, आप अल्लाह से कहिए कि हिसाब शुरू कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे हया आती है इसलिए कि मैंने एक गलती की थी, जन्नत में फल खाने वाली। तो इसी तरह से वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर फाइनली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हमद में, अल्लाह की तारीफ में वो लंबा सजदा करेंगे जो आपने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं किया होगा, और उसके बाद अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल दुआ करेंगे, और फिर हिसाब किताब का मरहला शुरू किया जाएगा। ये एक स्टेप है सिर्फ, लेकिन मुफस्सरीन कहते हैं कि जहन्नुम वाला पार्ट टफेस्ट पार्ट होगा आहेर आफ्टर का, आखिरत का। आप इमेजिन करें जहन्नुम क़यामत का मंजर, अल्लाह का अर्श वाजे कर दिया जाएगा, अल्लाह के अर्श को थामने वाले फरिश्ते जो कि नॉर्मल फरिश्तों से भी ज्यादा बड़े फरिश्ते आते हैं, जाइंट साइज फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह का अर्श थामा हुआ है, वो फरिश्ते ऑब्वियस हो जाएंगे, पूरी ग्रैंड गैदरिंग होगी इंसानियत की। अल्लाह का अर्श होगा, अर्श को थामने वाले फरिश्ते होंगे, और उसके अलावा फरिश्तों की सफों की सफें होंगी, और दरमियान में इंसानियत खड़ी होगी। कैसा एकदम से कैसा ख्याल आता है, जैसे आपकी चारों तरफ मशीन गन्स लेके आर्मी के लोग खड़े हुए हों और दरमियान में आप खड़े हुए हों। और ये तो कोई, ये कोई कंट्रास्ट है, एक मतलब रिलेशनशिप बनता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श देखना ही पता नहीं कैसा होगा, इसलिए कि अल्लाह का, एक है अल्लाह का अर्श और एक है अल्लाह की कुर्सी। अल्लाह की कुर्सी बिल्कुल फुट स्टूल की तरह है अल्लाह के अर्श के मुकाबले में। और अल्लाह की कुर्सी के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी कैसी है इस दुनिया के मुकाबले में। आपने फरमाया अल्लाह की कुर्सी और इस दुनिया की मिसाल ऐसे है कि जैसे अल्लाह की कुर्सी एक सहरा हो और आप उस सहरा में अपनी एक रिंग उठाकर फेंक दें, कहीं नजर आएगी आपको? तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो अल्लाह की कुर्सी सहरा की तरह है और वो जो आपकी रिंग उसमें पड़ी हुई है वो दुनिया है। और इसी तरह से आपने मिसाल देकर बताया कि अल्लाह का अर्श कैसा है। आपने कहा अल्लाह का अर्श ऐसा है कि जैसे सहरा अल्लाह का अर्श है और उसमें रिंग की तरह अल्लाह की कुर्सी पड़ी हुई। आप और मैं अल्लाह की मेजेस्टी, अल्लाह के जलाल, उसकी अजमत का अंदाजा कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे इफ्तरा अल्लाह इंसान कर सकता है, कैसे अल्लाह के अहकामात को छोड़ सकता है, कैसे अल्लाह की नाफरमानी कर सकता है। तो मुफस्सरीन बताते हैं कि आप इमेजिन करें कि अल्लाह का अर्श होगा, आपके चारों तरफ फरिश्ते होंगे सफ दर सफ, और दरमियान में इंसानियत खड़ी होगी अकाउंटेबिलिटी के लिए। ऐसे में अल्लाह जहन्नुम को बुलाएगा, और जहन्नुम सिर्फ एक आग का गढ़ा नहीं है। आप अहादीस पढ़ें तो आपको पता चलता है कि जहन्नुम एक रोरिंग रेजिंग बीस्ट है, एक बहुत बड़ा वहशी जानवर की तरह है। जहन्नुम के लिए आता है अहादीस में, जहन्नुम को 70,000 लगामों से पकड़ा गया है, थामा हुआ है उसको, इसलिए कि एक बीस्ट जो कि आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो, अब उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर चेन्स और उस पर रस्सी डाल देते हैं। जहन्नुम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्क्राइब किया कि जहन्नुम को 70,000 रोप्स, रस्सियों से, लगामों से बांधा गया है, और हर एक रस्सी को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। سورہ فجر میں آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. ہم تو ایسے ترنم کے ساتھ پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم قیامت کے کس ہولناک منظر کو پڑھ رہے ہیں. جب سمجھ نہیں آئے گا تو آنسو کیسے بہیں گے, جب امیجن نہیں کر سکیں گے تو اللہ کا خوف کیسے طاری ہوگا, جب اللہ کا خوف طاری نہیں ہوگا تو عمل میں کیسے دوڑیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور جہنم کو اس دن لایا جائے گا, آگ کو لایا جائے گا. اور جب جہنم آئے گی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوفناک اور دہشت زدہ منظر کوئی نہیں ہوگا. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا, جس کا مفہوم آتا ہے اے عمر اگر تم نے 70 رسولوں جیسے اعمال صالحہ بھی کیے ہوں گے تو اس موقع پر تم کو ڈر لگ رہا ہو. آپ کی میری کیا حیثیت ہے؟ اور ہر مخلوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اس لیے کہ سب کھڑے ہوں گے, ان میں شہداء, انبیاء, مومنین اور کفار سب ہوں گے. سب کے سب جب جہنم کو لایا جائے گا تو گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے. بخاری میں آتا ہے, صحیح بخاری میں, ان الناس یسیرون یوم القیامت جثا, وہ سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اللہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے, اللہ ہمیں اس سے بچا لے. ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ بہت سے ایسے مسلمان, 70,000 ایسے مسلمان ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں, یہ بھی تو ہمیں جاننا چاہیے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی ان کی, اللہ مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا, اللہ ان کی کتاب پر نظر بھی نہیں ڈالے گا, اس لیے کہ ان کے اعمال راکھ بنا کر, ایشز بنا کر اڑا دیے جائیں گے. اور جہنم کے لیے آتا ہے کہ جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی, واللہ اعلم. اللہ ہمیں اس موقع پر بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی اور جس کو جہنم دیکھے گی اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس کا انہیبیٹنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نظر اٹھائے گا نہیں اور لوگوں کی نظریں زمین پر گڑ جائیں گی تاکہ جہنم ہمیں مت دیکھے, اس لیے کہ جس کو وہ دیکھے گی وہ جہنمی بننے والا ہوگا, وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. اور جہنم کی جو آوازیں ہیں, اسکریمنگ, جو رورنگ ساؤنڈز ہیں, وہ سنائی دے رہی ہوں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور یہ جو قرآن ہے, یہ مجھے اور آپ کو جو ڈسکرپشن دے رہا ہے یہ صرف ڈرانے کے لیے دے رہا ہے. قرآن ہارر مووی کی طرح نہیں ہے کہ خود ہی لے کر آتے ہیں, خود ہی بیٹھ کر لگاتے ہیں, پاپ کارن کھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ, چار دن تک ڈر لگے جا رہا ہے. ہارر مووی سے ڈرتے ہیں اور جہنم کے ڈسکرپشن سے ڈر نہیں لگتا, یہ کیسا ڈر ہے؟ ہارر مووی سے ڈریں گے تو دوسرے کمرے میں نہیں جائیں گے جس میں اندھیرا ہے. اور جہنم سے, جہنم کے ڈسکرپشن سے ایسا ڈر بھی نہیں لگتا کہ جہنم گناہ کی جگہ پر قدم نہ رکھے. ہم انسان کا کیا حال ہے؟ انسان بہت ظالم ہے رب کی نافرمانی میں. آگے فرمایا اسی آیت میں وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِن كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوُجُوهُ بِئْسَ الشُّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور جہنم میں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی مولٹن لیڈ, پگھلے ہوئے تانبے کی شکل میں دیا جائے گا, جو ان کے چہرے کو برن کر دے گا, جو ان کا منہ بھون دے گا. اور کیا ہی برا پینے کی چیز ہے اور کتنی بری جگہ, اور کتنی بری جگہ ٹھہرنے کی. آپ امیجن کریں, یہ وہ ڈسکرپشنز ہیں جس کو آپ کا اور میرا دماغ رجسٹر نہیں کر سکتا ہے. آج کل گرمی ہے نا, اگر آپ ایک دم سے شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے دوپہر کے 3 بجے, تو جو پانی آتا ہے جان نکل جاتی ہے نا اس سے, اس کا کیا ٹیمپریچر ہے؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے. جہنم کی آگ جھلسا دینے والی ہے, جہنم کی آگ جلد کے اندر اذیت کو لانے والی ہے. جیسے ایک اسکالر کہتے ہیں جہنم کی جو ہیٹ ہے وہ شدید ہے, ہر روحا شدید. جہنم کی آگ, اس کی گرمی شدید ہے, ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی. 37 اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ, جہنم کا ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ قاروحا بعید, اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. آپ امیجن کریں کہ ایک چیز ڈیپ بھی ہو اور گرم بھی ہو, और जहन्नम के लिए आता है कि जहन्नमी एक दूसरे से अजियत में चिपक जब रहे होंगे, इसलिए कि भर दिया जाएगा जहन्नम को, और जहन्नम में इतने लोग डाले जाएंगे कि उसकी कैपेसिटी खत्म नहीं होगी, और वो कहती जाएगी हल मिम मजीद, क्या और भी है। जहन्नम में एक दूसरे के साथ चिपकने का अजाब भी होगा, अगर गर्मी हो भी यहां एसी बंद हो जाए और पंखे भी बंद हो जाए और हम सब बिल्कुल एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठे हुए, गर्मी में एक दूसरे से टच करना कितना बुरा लगता है, कहां जहन्नम। और वहां लोग जो हैं वो एक डीप किस्म के डेप्थ के अंदर होंगे, होली योहल हदीद, जहन्नम का जेवर, जहन्नम की जो ज्वेलरी पहनाई जाएगी वो लोहे की होगी। आपने अपनी गोल्ड बैंगल्स पहनी हो और आप किचन में चूल्हे के पास काम कर रही हो, जरा सी आप देखती हैं कि कितनी जल्दी गोल्ड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर आपको फील हो देर में तो आपकी उस जगह पर निशान पड़ जाता है स्किन पे। जहन्नम के जेवर के लिए आता है होली योहल हदीद, उसकी ज्वेलरी जंजीरें होंगी, व शराबु हल कल्ला व सदीद, और उसका मशरूब गर्म तरीन मशरूब होगा। जहन्नम के अंदर जैसे इंसान को दुनिया में भूख और प्यास लगती है, जहन्नम में भी इंसान को भूख और प्यास लगेगी। और अहदीस बताती हैं कि जो भूख और जो प्यास जहन्नमियों को लगेगी उसकी कैफियत दुनिया की कैफियत से कई इंटेंसिटी में परसेंटेज वाइज ज्यादा होगी। जब भी वो ये मोल्टन लेड मोल्टन मैग्मा पी जाएंगे जो उनकी स्टमक और उनके सारी इंटेस्टाइंस को डिजॉल्व कर देगा, जब भी वो जक्कूम का दरख्त जिसका सर जो है वो एक दरख्त के बड़े उसके बराबर है, कैक्टस का दरख्त खा जाएंगे, इसलिए कि भूख का अजाब होगा। अल्लाह ताला ने ये जहन्नम के अंदर चीजें और ये डिस्क्रिप्शन रखी हैं, और ये इंसेंटिव अल्लाह ने ये क्यों दिए हैं, ये जहन्नम की डिस्क्रिप्शन इतनी विविड डिस्क्रिप्शन क्यों दी है, ताकि आप और मैं उससे बचने की तैयारी करें। अल्लाह ने मेरे और आपके जिस्मों को जहन्नम में जलने के लिए नहीं बनाया, लेकिन याद रखें अल्लाह ने ऑप्शन दिया है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, चॉइस आपकी और मेरे पास है। अल्लाह हमें अपनी जिंदगियों के अंदर अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर आने की तौफीक दे दे। अल्लाह हमें ऐसे हाल में मौत दे कि जब हम अपने अंजाम से राजी हों और अल्लाह हमसे राजी हो। अल्लाह हमें कलमाए शहादत पर और अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन नेकी पर मौत दे। अल्लाह हम सबसे आसान हिसाब ले। अल्लाह हमें आखिरत में जहन्नम के हर तरह के अजाब से बचा ले। अल्लाह हमारी कब्रों में कभी भी जहन्नम का गढ़ा ना बने। अल्लाह हम सब की कब्रों में जन्नत के बाग को बना दे और जन्नत की कयारियां बना दे। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़ानी व इयाकुम बि आयाति व ज़िक्र अल हकीम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।